एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास पर बात करने वाले हैं, सू मिलर का, व्हाइल आई वॉज गॉन।
नमस्कार। हाँ, सू मिलर, जिन्हें अमेरिकी मध्यवर्गीय जीवन, खासकर महिलाओं के मन की उलझनों और रिश्तों की बारीकियों को दिखाने में कमाल की महारत हासिल है।
बिल्कुल, उनकी पहली किताब थी द गुड मदर, उसने ही उन्हें एक अहम साहित्यिक आवाज के तौर पर स्थापित कर दिया था, है ना?
हाँ, सही कहा। और व्हाइल आई वॉज गॉन, जो करीब 1999 में आई, वो भी कुछ कम नहीं, बेस्ट सेलर तो बनी ही, ऊपर से 2000 में प्रतिष्ठित ओपरा बुक क्लब में भी चुनी गई।
तो मतलब काफी चर्चा में रही है किताब।
बहुत, और आलोचकों ने भी इसकी कहानी कहने के अंदाज और जो मनोवैज्ञानिक गहराई है ना इसमें, उसकी बहुत तारीफ की।
हाँ,
और ये जानना दे दिलचस्प है कि ये है किस तरह की कहानी। मतलब ऊपर से देखें तो ये घरेलू साहित्य कथा है, परिवार, शादी, रिश्ते, इन्हीं के इर्द गिर्द।
बिल्कुल, लेकिन इसमें वो मनोवैज्ञानिक पुट बहुत गहरा है। किरदारों के मन में क्या चल रहा है, उनके अंदरूनी संघर्ष, उन पर ज्यादा ध्यान है।
और कहीं कहीं थ्रिलर जैसा रोमांच भी है, और वो नैतिक दुविधाएं भी, सही गलत का चुनाव। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास की जो परतदार कहानी है, इसके पात्रों के उलझे हुए से चरित्र हैं, और ये जो विषय हैं इसमें, अतीत और वर्तमान का टकराव, राज, पहचान, शादी, इन सब पर गहराई से बात करें, देखें कि हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है।
जरूर, तो चलिए कहानी की नायिका से शुरू करते हैं, जोसेफीन जो बेकर।
ठीक है।
जो मतलब 50 के आसपास की उम्र है उनकी, और वो मैसाचुसेट्स के एक छोटे शांत से शहर एडम्स में एक बहुत कामयाब पशु चिकित्सक हैं, वेटरिनेरियन।
अच्छा।
पहली नजर में देखो तो उनकी जिंदगी बिल्कुल सही, एकदम मुकम्मल लगती है। अपना सफल क्लिनिक है, एक बहुत नेक स्थिर पति हैं डैनियल, जो पादरी हैं। तीन बेटियां हैं, कैस, नोरा, सैंडी, जो अब बड़ी हो गई हैं अपनी अपनी राह पर, समाज में भी काफी इज्जत है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत सोच समझ कर, बड़े जतन से अपने लिए शांति और स्थिरता का एक किला बना लिया है,
एक सुरक्षित किला।
पर अक्सर ऐसी ही कहानियों में मजबूत दिखने वाली दीवारों के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। तो ये जो सावधानी से बनाए गए संसार है, ये दरकना कैसे शुरू होता है? कोई बाहर से चोट करता है या दरारें अंदर ही थीं?
दरारें तो शायद अंदर पहले से ही थीं, पर उन्हें सतह पर लाता है एक बाहरी झटका। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब एली मेवियो नाम का एक आदमी,
एली मेव्यू,
हाँ, वो अपनी एक बीमार कुत्ते को लेकर जो के क्लिनिक आता है, और जैसे ही उनकी नजरें मिलती है ना, दोनों एक सेकंड में एक दूसरे को पहचान लेते हैं।
ओह, और ये पहचान जो के अंदर जैसे एक तूफान खड़ा कर देती है, क्योंकि एली में भी कोई आम जान पहचान वाला नहीं है, वो उसके अतीत का हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे वो लगभग 30 साल से अपने मन के किसी अंधेरे कोने में दफना चुकी थी।
अतीत का एक भूत जो दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है।
बिल्कुल।
तो यहीं से वो असली कश्मकश शुरू होती होगी, जो का आज का शांत जमा जमाया जीवन और उसका वो राज वाला तूफानी अतीत, दोनों आमने सामने। कैसा था ये अतीत जिसे वो इतना भुलाना चाहती थी?
इसके लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा, काफी पीछे, करीब 30 साल, 1960 के दशक का अंत।
अच्छा, 60s का दौर।
हाँ, जगह है कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स। तब जोसेफीन जो नहीं थी, वो जॉय थी, एक जवान लड़की, थोड़ी कह सकते हैं अल्लड़, आवेगी, जिसने अपनी पहली शादी, जो शायद जल्दबाजी में हुई थी, उसे अचानक तोड़ दिया। और वो एक कम्यूनल हाउस में रहने चली गई, मतलब एक ऐसा घर जहां कई लोग साथ रहते थे, एक सामूहिक जीवन। वो दौर ही ऐसा था अमेरिका में, बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलाव हो रहे थे।
हाँ, वो काउंटर कल्चर वाला दौर।
बिल्कुल, कट्टरपंथी राजनीति, नए विचारों का उबाल, व्यक्तिगत आजादी की चाह, आदर्शवाद, ये सब कुछ उस घर के माहौल में था, लेकिन साथ ही रिश्तों में तनाव, अनिश्चितता और एक तरह की लापरवाही भी थी।
उस कम्यून पे और कौन लोग थे खास? एली मेव्यू तो था ही, और किसने युवा जॉय की जिंदगी पर असर डाला होगा?
हाँ, एली तो था ही, वो उस कम्यून का जैसे एक बौद्धिक करिश्माई लीडर जैसा था। अपने विचारों से, अपनी पर्सनालिटी से लोगों को, खासकर जॉय जैसी युवा लड़की को, आसानी से प्रभावित कर लेता था। फिर एक और बहुत अहम किरदार थी डाना जाब्लॉन्स की। डाना बहुत खूबसूरत थी, जिंदा दिल, लेकिन भावनात्मक रूप से काफी अस्थिर, उलझी हुई सी। वो माहौल में उत्तेजना भी लाती थी और तनाव भी।
अच्छा।
और एक तीसरा शख्स था लैरी, वो डाना के पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ था, लगभग जुनून की हद तक।
तो मतलब वो कम्यून एक तरफ तो आजादी और नएपन का प्रतीक था, लेकिन दूसरी तरफ उसमें भावनात्मक उथल पुथल और खतरे भी थे।
बिल्कुल।
और जैसा अक्सर होता है ऐसे माहौल में, ये दौर शायद किसी दुखद घटना पर खत्म हुआ होगा। क्या हुआ था जिसने जॉय को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया?
उस दौर का अंत हुआ डाना जब्लॉन्स्की की हत्या से।
हत्या?
हाँ, एक ऐसी हत्या जो कभी पूरी तरह सुलझी ही नहीं, और यहीं पर युवा जॉय एक बहुत मुश्किल नैतिक जाल में फंस गई।
असल में हुआ ये कि हत्या वाली रात से ठीक पहले जॉय ने एली और डाना के बीच एक जोरदार हिंसक बहस देखी थी।
ओ।
जिसमें गुस्से में ए ने डाना को थप्पड़ भी मार दिया था।
लेकिन जब पुलिस आई पूछताछ करने, तो एली ने जॉय को अपनी बातों में फंसाकर, शायद भावनात्मक दबाव डालकर, ये जानकारी पुलिस को बताने से रोक लिया।
क्या कहा उसने?
उसने यही कहा कि ये बताने से बेवजह वो खुद फंस जाएगा और डाना तो वापस आने से रही।
ओह, और जॉय मान गई? उसने इतनी बड़ी बात छुपा ली?
हाँ, उस वक्त की घबराहट थी, एली का असर था, और शायद कहीं ना कहीं खुद को बचाने की इच्छा भी रही होगी। जॉय चुप रह गई।
तो फिर क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि पुलिस का शक लैरी पर चला गया, जो डाना के पीछे पड़ा रहता था। पुख्ता सबूत तो नहीं थे, पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर लैरी को ही हत्या का दोषी मान लिया गया। उसे उम्र कैद हो गई।
अरे बाप रे, एक बेगुनाह को सजा हो गई।
ऐसा ही लगता है। और इस पूरी घटना से, इस अपराध बोध से, उस जीवन की उथल पुथल से घबराकर जॉय कैम्ब्रिज से भाग निकली। उसने अपना नाम बदला, पहचान बदली, और धीरे धीरे बहुत मेहनत करके आज की ये सम्मानित स्थिर पशु चिकित्सक जो बेकर बन गई।
तो एली का इतने सालों बाद लौटना सिर्फ एक पुरानी याद ताजा करना नहीं है, ये तो उस पूरे अतीत का सामना है जिस पर जो की आज की जिंदगी टिकी है।
हाँ, एक ऐसी नींव जिसमें चुप्पी है, डर है, और एक नैतिक चूक का, कह सकते हैं, सीमेंट लगा है।
जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, उपन्यास का शायद यही केंद्रीय सवाल है, क्या एक ऐसा जीवन जो सच को दबाकर एक तरह के धोखे पर बनाया गया हो, वो कभी सचमुच प्रामाणिक अपना हो सकता है?
बिल्कुल। और यहीं से जो का अंदरूनी संकट और गहरा जाता है। एली के लौटने के बाद वो उसकी असली पहचान, मतलब उसका अतीत से जुड़ाव, अपने पति डैनियल से छुपाती है।
अच्छा।
वो बहाना बनाती है कि एली बस एक क्लाइंट है, उसकी कुत्ते का इलाज चल रहा है। उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं, ऊपर से तो बहाना कुत्ते का है, पर अंदर ही अंदर वो अतीत का खिंचाव, वो पुरानी पहचान का एक अजीब सा आकर्षण है जो जो को एली की तरफ खींच रहा है।
ये खिंचाव कैसा है? क्या ये सिर्फ एक पुराना प्यार है या फिर?
नहीं नहीं वो उससे कहीं ज्यादा पेचीदा मामला था। मतलब जो कुछ सालों बाद ऐसा लगता है कि कोई उसे सच में देख रहा है, समझ रहा है। ना सिर्फ आज की डॉक्टर जो को, बल्कि इस पुराने जॉय को भी, जिसे दुनिया भूल चुकी है, जिसे उसने खुद भुला दिया था। एली के साथ वो बौद्धिक बातें, पुरानी यादें उसे फिर से जिंदा महसूस कराती हैं, जैसे वो सालों की नींद से जागी हो।
तो ये आकर्षण सिर्फ रोमांटिक नहीं है?
नहीं, उससे ज्यादा है अली। उसके लिए उस दबी हुई जॉय तक पहुंचने का एक रास्ता बन जाता है वो जॉय, जो शायद ज्यादा जिंदा दिल थी, ज्यादा जोखिम लेने वाली, ज्यादा असली शायद।
यहीं पर वो विभाजित स्व यानी डिवाइडेड सेल्फ का विचार बहुत मजबूत होकर सामने आता है ना, कि हमारे अंदर अक्सर एक से ज्यादा मैं होते हैं जो कभी कभी टकराते हैं।
हाँ बिल्कुल।
एक तरफ डॉक्टर जो बेकर, शांत, काबिल, जिम्मेदार, मरहम लगाने वाली, दूसरी तरफ वो पुरानी जो भावुक, आवेगी, गलतियां करने वाली। मिला शायद यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम सच में बदल जाते हैं या बस अपने कुछ हिस्सों को दबा देते हैं समाज के लिए या खुद को बचाने के लिए। तो इस आकर्षण का अंजाम क्या होता है?
ये आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता है और आखिरकार एक शारीरिक संबंध में बदल जाता है।
ओह।
और ये उपन्यास का एक बड़ा नैतिक टर्निंग पॉइंट है, एक बड़ा उल्लंघन। ये सिर्फ पति डैनियल के साथ विश्वासघात नहीं है, ये उस जो के साथ भी धोखा है जिसे उसने इतने सालों में इतनी मेहनत से गढ़ा था।
जाहिर है
वो इस रिश्ते को छुपाने की, संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ये राज एक जहर की तरह उसकी शांति, उसके सुकून में घुलने लगता है।
और इसका असर उसके पति डैनियल के साथ उसके रिश्ते पर तो पड़ता ही होगा। हमने सुना कि डैनियल एक नेक पादरी है, उसका सहारा है, उसे बहुत प्यार करता है। वो कैसे महसूस करता है इस बदलाव को?
डैनियल, जो स्वभाव से ही शांत और संवेदनशील है, वो जो के व्यवहार में बदलाव, उसकी वो भावनात्मक दूरी, वो बेचैनी, उसे महसूस करने लगता है। वो शायद समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, पर उसे ये एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उनके बीच की वो सहजता, वो अपनापन कम होने लगता है, और जो वो लगातार अपराध बोध और डर में जीती है।
यहीं पर शायद वो ख्याल आता होगा जिसका जिक्र मिलता है कि सुरक्षा और खुशी एक ही चीज नहीं है।
हाँ बिल्कुल, और शायद मैंने 20 साल तक एक को दूसरे के साथ भ्रमित किया हो। उसे लगने लगता है कि उसने जो स्थिर जीवन बनाया वो सुरक्षित तो था, पर क्या वो सच में खुश थी या उसने अपनी किसी गहरी जरूरत को नजरअंदाज कर दिया था।
ये तो एक भयानक कश्मकश है। एक तरफ सालों का बनाया घर, पति का प्यार, इज्जत, दूसरी तरफ अतीत का नशा और एक दबी हुई पहचान की पुकार। ये स्थिति तो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही होगी। आखिरकार क्या करती है? क्या वो इसी दोहरी जिंदगी में फंसी रहती है?
नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाती। एक वक्त आता है जब जो को ये भयानक एहसास होता है कि एली के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक भटकाव नहीं है, ये तो उसी पुराने पैटर्न को दोहरा रहा है, झूठ, राज, जिम्मेदारी से भागना। उसे लगता है वो फिर वही गलती कर रही है जो उसने 30 साल पहले की थी। उसे समझ आता है कि अगर उसे अपनी आत्मा को बचाना है तो इस चक्र को तोड़ना ही होगा।
तो वो क्या करती है?
वो पहले एली के साथ अपना रिश्ता खत्म करती है और फिर वो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे भयानक फैसला लेती है।
क्या?
अपने पति डैनियल को सब कुछ सच सच बताने का।
सब कुछ?
मतलब सिर्फ एली के साथ अफेयर के बारे में या सब कुछ, पूरी सच्चाई? वो डैनियल के सामने बैठती है और ना सिर्फ एली के साथ अपने हालिया संबंध का सच बताती है, बल्कि वो 30 साल पुराना राज भी खोल देती है।
बाप रे!
कि कैम्ब्रिज में क्या हुआ था, उसने डाना की मौत से पहले क्या देखा था, कैसे उसने एली के कहने पे सच छुपाया और कैसे उसकी चुप्पी ने शायद एक बेगुनाह लैरी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
हे भगवान, डैनियल पर क्या गुजरी होगी ये सुनना ही कितना मुश्किल है। स्रोत बताते हैं कि डैनियल पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है।
हाँ,
उसके लिए ये सिर्फ बेवफाई का सदमा नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये इस बात का भयानक एहसास था कि जिस औरत के साथ उसने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे, जिसे वो अपनी साथी समझता था, वो असल में एक अजनबी थी। उनका पूरा जीवन, उनका रिश्ता एक झूठ पर, एक छिपे हुए इतिहास पर टिका था। जैसा कि किसी ने कहा है, सबसे दर्दनाक विश्वासघात संबंध नहीं था, ये 30 साल की चुप्पी थी। उन्होंने एक अजनबी से शादी की थी। ये एहसास तो किसी को भी तोड़ते रख दे।
बिल्कुल, और इसके बाद जो थोड़ी हिम्मत जुटाकर एली का भी सामना करती है, वो उसे साफ साफ कहती है कि वो मानती है कि डाना की मौत और लैरी की गलत सजा के लिए वो नैतिक रूप से जिम्मेदार है।
और एली वो क्या कहता है?
एली वो अपनी चालाकी और खुद को बचाने वाले रवैये से बाहर नहीं आता। वो अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बनाता रहता है, खुद को सही ठहराता रहता है।
तो इन सब खुलासों के बाद क्या होता है? क्या जो की जिंदगी किसी तरह संभलती है?
नहीं, संभलती तो नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बिखर जाती है, जैसा कि होना ही था। जो का वो आदर्श दिखने वाला जीवन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।
डैनियल क्या करता है?
डैनियल इस गहरे धोखे और टूटे हुए विश्वास के बोझ तले जो को घर छोड़कर जाने के लिए कह देता है। और अचानक जो बिल्कुल अकेली रह जाती है, बिना पति, बिना घर और अपने ही फैसलों के नतीजों का सामना करती हुई। उसका बनाया हुआ वो सुरक्षित किला ढह चुका है।
एक टूटी हुई अकेली औरत के साथ या वो अपने अतीत की गलतियों को सुधारने की कोई कोशिश करती है, प्रायश्चित का कोई रास्ता निकलता है।
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और यहीं शायद उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखती है। अकेलेपन और अपराध बोध से जूझते हुए जो एक बहुत अहम कदम उठाती है।
क्या?
वो एक वकील से मिलती है और उससे लैरी, जिसे डाना की हत्या के लिए गलत सजा हुई थी, उसके मामले को दोबारा खोलने की संभावना पर बात करती है।
अच्छा।
वो जानती है कि अगर ये मामला फिर से खुला तो उसे गवाही देनी होगी और उसकी गवाही उसकी 30 साल पुरानी चुप्पी, उसकी मिलीभगत और एली की संभावित भूमिका सब कुछ उजागर कर देगी। इससे उसकी बची कुची इज्जत भी शायद चली जाए, लेकिन वो ये कदम उठाने का फैसला करती है।
तो उपन्यास का अंत कोई सीधा साधा सब कुछ ठीक हो गया वाला नहीं है, मतलब कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं?
बिल्कुल नहीं, अंत बहुत यथार्थवादी है, असल जिंदगी जैसा, थोड़ा धुंधला, अनिश्चित। जो और डैनियल अलग हो चुके हैं, उनके रिश्ते का भविष्य क्या होगा पता नहीं।
और लैरी और एली का?
लैरी को न्याय मिलेगा या नहीं, एली का क्या होगा, ये सब सवाल खुले छोड़ दिए गए हैं। कहानी किसी आसान जवाब पर नहीं पहुंचती।
तो फिर उपन्यास का आखिरी फोकस किस पर रहता है? पाठक क्या लेकर उठता है कहानी से?
अंत में फोकस वापस जो पर ही आ जाता है। हाँ, उसने अपना आरामदायक सुरक्षित जीवन खो दिया है, इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसने शायद कुछ पाया भी है।
क्या?
उसने अपने अतीत जॉय और वर्तमान जो का सामना किया है, उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की है। उसने अपने पूरे इतिहास को उसकी गलतियों और कमजोरियों समेत स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई है। ये एक दर्दनाक सफर रहा है, लेकिन शायद इसी से उसे एक तरह की टूटी हुई पर ज्यादा सच्ची, ज्यादा प्रामाणिक संपूर्णता मिली है। ये एक आसान जिंदगी की शुरुआत नहीं है, पर शायद एक ज्यादा ईमानदार जिंदगी की शुरुआत है।
चलिए, अब जब हमने कहानी को पूरी तरह समझ लिया है, तो इसके कुछ जो मुख्य विचार या विषय हैं, उन पे थोड़ी और बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो लगता है अतीत की पकड़ का।
हाँ, पर्सिस्टेंस ऑफ द पास्ट।
ये कहानी बार बार दिखाती है कि अतीत कभी मरता नहीं, चाहे हम उसे कितना भी गहरा दफना दें। कहते हैं ना, अतीत हमारे साथ खत्म नहीं होता, भले ही हम सोचें कि हम उसके साथ खत्म हो गए हैं।
सही कहा, वो एक जिद्दी साई की तरह पीछे लगा रहता है। जब तक आप उसका सामना नहीं करते, वो आपको चैन से जीने नहीं देता।
उतना ही महत्वपूर्ण है वो विभाजित स्व का विचार,
डिवाइडेड सेल्फ।
हाँ, कि हमारे अंदर मौजूद अलग अलग पहचाने या इच्छाएं कैसे टकराती हैं। क्या हम सब अंदर से थोड़े बटे हुए नहीं होते, एक चेहरा दुनिया के लिए, एक अपने लिए।
जो की कहानी इस कश्मकश को बहुत गहराई से दिखाती है। उसका वो एहसास कि मैं इतने लंबे समय से कोई और बनने की कोशिश कर रही थी कि मैं भूल गई थी कि मैं वास्तव में कौन थी, ये उसी बटे हुए स्व की पीड़ा है।
ये उपन्यास सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा सार्वजनिक चेहरा कभी पूरी तरह सच्चा होता है, या हम सब अपने अंदर एक छिपी हुई जॉय को अपनी बनाई हुई जो के नीचे दबाए रखते हैं। और इसी से जुड़ा है रहस्यों का जहरीला प्रभाव,
करोसिव नेचर ऑफ सीक्रेट्स।
बिल्कुल,
कैसे राज अंदर ही अंदर रिश्तों को और इंसान को खोखला कर देते हैं, चाहे वो डाना की मौत का पुराना राज हो या एली के साथ नए संबंध का।
दोनों ही जो के जीवन को जहर की तरह बर्बाद करते हैं। राज दीमक की तरह होते हैं ना, बाहर से सब ठीक लगता है पर अंदर नींव खोखली हो जाती है।
और ये उपन्यास विवाह और अंतरंगता की जटिलता पर भी बहुत ईमानदारी से बात करता है।
हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैरिज एंड इंटीमेसी।
ये दिखाता है कि शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं है, इसमें विश्वास है, साझा इतिहास है, एक दूसरे की कमजोरियों को जानना और स्वीकार करना शामिल है, और कैसे एक छुपा हुआ सच, एक गहरा विश्वासघात इस पूरी बुनियाद को हिला सकता है। डैनियल का टूटना सिर्फ बेवफाई से नहीं था, बल्कि सहसास से था कि उसका साझा इतिहास ही झूठ पटिका था।
हाँ, और वो विचार कि प्यार सिर्फ किसी को चाहने के बारे में नहीं है, ये उन्हें बार बार चुनने के बारे में है, तब भी जब ये मुश्किल हो, ये दिखाता है कि जो और डैनियल के रिश्ते में शायद ये चुनाव कहीं पीछे छूट गया था। इसी से जुड़ा है जिम्मेदारी और प्रायश्चित का विषय,
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अटोनमेंट।
हाँ, जो कि कहानी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने और उनके नतीजों का सामना करने के एक लंबे, मुश्किल और देर से शुरू हुए सफर की कहानी है।
देर आया दुरुस्त आयात, पर सफर आसान नहीं है।
बिल्कुल, और एक और दिलचस्प पहलू है स्मृति की अविश्वसनीयता का,
अनरिलायबिलिटी ऑफ मेमोरी।
अच्छा, वो कैसे?
पूरी कहानी हमें जो के नजरिए से पता चलती है, लेकिन क्या उसकी यादें पूरी तरह भरोसेमंद हैं? क्या समय, अपराध बोध, खुद को सही ठहराने की इच्छा, इन सब ने उसकी यादों को बदला नहीं होगा? उपन्यास ये सवाल भी उठाता है कि हम अतीत को याद कैसे रखते हैं और क्यों?
क्या हमारी यादें सच का रिकॉर्ड है या वो कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं?
दिलचस्प। और आखिर में वो सुरक्षा और परंपरा की कीमत का सवाल भी है,
कॉस्ट ऑफ सेफ्टी एंड कन्वेंशन।
हाँ,
क्या जो का वो शांत, सम्मानित, सुरक्षित जीवन वाकई जीने लायक था अगर उसकी कीमत अपनी असल पहचान के एक हिस्से को दबाना था?
उपन्यास इसका कोई आसान जवाब नहीं देता, पर हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि हम अपनी जिंदगी में सुरक्षा, खुशी और प्रामाणिकता के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं और क्या कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं।
अगर हम संक्षेप में सू मिलर की लेखन शैली पर बात करें, तो कहानी अक्सर जो के नजरिए से ही चलती है। पाठक उसके विचारों, भावनाओं, उसकी कश्मकश को बहुत करीब से महसूस करता है।
हाँ, इससे हम किरदार से जुड़ते तो है, पर कभी कभी ये सवाल भी उठता है कि क्या हम पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं या सिर्फ उसका पक्ष।
मिलर मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद में माहिर हैं। वो किरदारों के मन की गहराइयों में उतरती हैं, रिश्तों की बारीक परतों को खोलती हैं, और उनके संवाद बहुत असली लगते हैं। और उपन्यास की वो दोहरी समय सीमा संरचना, कहानी का वर्तमान और अतीत के बीच लगातार आना जाना, वो अतीत की पकड़ को और मजबूत करती है। लगता है जैसे अतीत सिर्फ याद नहीं बल्कि अभी भी घट रहा है।
प्रतीकवाद का इस्तेमाल भी काफी कुशलता से किया गया है ना?
हाँ, बिल्कुल। जैसे जो का पशु चिकित्सक होना, वो जानवरों के जख्म तो भरती है पर इंसानी अन्याय पर सालों तक चुप रही। उसका घर जो पहले सुरक्षा और प्यार का प्रतीक था वो अंत में बिखर जाता है। और वो कैम्ब्रिज का कम्यून,
हाँ।
वो 60 के दशक के आदर्शवाद के मोहक लेकिन खतरनाक और आखिरकार विनाशकारी पहलू का प्रतीक बन जाता है।
तो कुल मिलाकर व्हाइल आई वाज गॉन एक गहरी और बेचैन करने वाली कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि अतीत से भागना नामुमकिन है और अपनी सच्चाई का सामना करने की कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है।
हाँ, और ये रिश्तों में ईमानदारी, अपने पूरे वजूद को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों समेत स्वीकार करने और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर एक गंभीर चिंतन है, भले ही उसका रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।